ओम शांति। सोलहवीं शताब्दी जर्मनी के किसी एक छोटे से गांव में एक घटना घटी तो नवयुवक जो कि चित्रकला सीखना चाहते थे, चित्रकला की शिक्षा के लिए बड़े शहर में आए, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे। दोनों दरिद्र थे, बहुत गरीब थे। तो एक मित्र ने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पहले तुम सीखो, जब तुम्हारा सीख कर हो जाएगा उसके बाद फिर मैं सीखूंगा। तो जो पहला मित्र था वो चित्रकला सीखने में लग गया और चित्रकला में इतना साधना मग्न हो गया कि कितने दिन गुजर गए, कितने मास गुजर गए और कितने साल गुजर गए। और जो दूसरा मित्र था वो मेहनत करता रहा, मजदूरी करता रहा, चट्टाने पत्थर तोड़ता रहा। और बहुत समय के बाद जो पहला मित्र था वो चित्रकला में बहुत पारंगत हो गया। उसके चित्र लोगों को पसंद आने लगे और उसका नाम बहुत होने लगा। तब उसने कहा कि अब अपने मित्र से कहा कि अब तुम्हारी बारी है। परंतु वो जो दूसरा मित्र था जो कि दिन रात मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था ताकि उसका मित्र चित्रकला सीख सके, परंतु इतने सालों के बाद परिणाम ये हुआ कि अब उसके हाथ चित्रकला के योग्य न रहे, सख्त हो गए, कठोर हो गए, विकृत हो गए। पत्थर तोड़ते तोड़ते, चट्टाने तोड़ते तोड़ते, गड्ढे खोदते खोदते, तब पहले मित्र की आंखों में आंसू आ गए, अब क्या। और अब तक ये जो पहला मित्र था इसका बहुत नाम हो गया, परंतु जो दूसरा था उसे कोई दुख नहीं था, उसे कोई गम नहीं था, इसे किसी बात की कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश था फिर भी, क्योंकि उसने जो कुछ किया अपने मित्र के लिए किया था। और जो पहला मित्र था वो इतना प्रसिद्ध हो गया तब तक जर्मनी का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार एल्ब्रेक्ट ड्यूरर, जिसका नाम है, उसने अपने मित्र की याद में एक चित्र बनाया जो चित्र बहुत 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 प्रसिद्ध है, जो शायद आप सब लोगों ने देखा होगा। ऐसा चित्र द प्रेइंग हैंड्स का, और उसने अपने मित्र की याद में वो चित्र बनाया जिसे वर्ल्ड फेमस, विश्व की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति कहा गया है। वो हाथ चित्र सीखने आए थे परंतु चित्र कला नहीं सीख पाए, परंतु फिर भी प्रार्थना भरे वो हाथ, क्या ऐसे कोई हाथ हो सकते हैं जो प्रार्थना के लिए इससे योग्य हो, शायद नहीं। एल्ब्रेक्ट के हृदय में बहुत दुख था, परंतु उसके मित्र के हृदय में कोई दुख नहीं था। वो इसी में तृप्त था, इसी में संतुष्ट था कि मैंने अपना जीवन अपने मित्र के लिए दे दिया। ना उसे अपने हाथों से कोई शिकायत थी, ना भाग्य से, ना परिस्थिति से, ना जीवन में आई और किसी बात से, तो ये कहानी 16वीं शताब्दी की है, जो ईश्वर के राज्य में जाएगा वैसा ही होगा, प्रेम पूर्वक, चित्त जिसका हो, हृदय में संपूर्ण तृप्ति जिसके हो। और तृप्ति एक संस्कार है, इसका वस्तुओं से, पदार्थों से, परिस्थितियों से, भाग्य से, प्रकृति से कोई संबंध नहीं। जिसका स्वभाव, जिसका नेचर ही तृप्ति है, संतुष्टता है, उसे कोई भी असंतुष्ट नहीं कर सकता। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने, ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? संतुष्टता। ब्राह्मणों की पर्सनालिटी क्या है? प्रसन्नता। ब्राह्मणों का सुख क्या है? संतुष्टता। ब्राह्मणों का संगम युग का वर्षा क्या है? संतुष्टता। यदि ब्राह्मण जीवन मिला है फिर भी असंतुष्ट तो क्या लाभ हुआ, प्रश्न पूछा है बाबा ने। इतना सब कुछ मिला उसके बाद भी हृदय अतृप्त है। ब्राह्मणों के लिए क्या गायन बताया? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ब्राह्मणों के घर में, ब्राह्मणों के हृदय में, ब्राह्मणों के खजानों में, ब्राह्मणों के जीवन में। और फिर भी यदि अप्राप्ति है तो जरूर कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है। क्यों ये अप्राप्ति है? अप्राप्ति का बीज क्या है? असंतुष्टता का बीज क्या है? अप्राप्ति। और अप्राप्ति का बीज क्या है? दो कारण बताए हैं। बहुत डीप फिलॉसफी बाबा ने इस मुरली में डिस्कस की है। सब कुछ होते हुए भी क्यों हृदय अधीर है, चंचल है, अतृप्त है? कोई ना कोई अप्राप्ति है। क्यों? दो कारण। पहला कारण, खजाने मिले हैं परंतु शायद पूरे लिए नहीं है। खजाने मिले हैं परंतु शायद उन खजानों को कार्य में नहीं लगाया है। और दूसरा कारण, हद की कोई ना कोई कामना। ये दो मुख्य कारण है जिसके वजह से अतृप्ति का भाव है, असंतुष्टता का भाव है। और अप्राप्ति भी दो प्रकार की है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो बाबा ने आज की मुरली में तीन प्रकार की मालाएं देखी और प्रश्न पूछा है, अपने आप से पूछो, मैं किस माला का मंडका हूं? और ब्रह्मा बाबा जब इन तीन मालाओं को देखते हैं तो क्या रूरियान होती है उनके मन में? जो दो नंबर वाले हैं वो एक में आ जाए और जो तीन नंबर वाले हैं वो दो में। बोला है सर? और जो किसी भी माला में नहीं है वो ज्ञान को बाबा रमणीक बनाते हैं। तो जो टॉप मोस्ट माला है उसमें कौन है? संतुष्ट मणिया। क्या विशेषता है उनकी? वो मन से संतुष्ट है, वाणी से, तन, उन्हें शरीर के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, उसे भाग्य के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, भाग्य विधाता के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, ड्रामा के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत नहीं, प्रकृति के प्रति कोई शिकायत नहीं, किसी परिस्थिति के प्रति कोई शिकायत नहीं। वो मन से, दिल से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, हिसाब किताब से, सबसे तृप्त है। दृष्टि, वृत्ति, कृति से संतुष्ट है। मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क से संतुष्ट है। संतुष्टता को बाबा ने हमेशा मणि बताया है, जिस मणि का प्रकाश चहुओं ओर फैलता है। और आज कहा जो संतुष्ट आत्मा है वो क्या करती है, दूसरों को भी क्या देती है, क्या देती है, गोल्डन पुष्प, खुद उन पर भी बरसते हैं बाप दादा द्वारा, और वो भी दूसरों को तृप्त करते हैं। संतुष्टता स्वभाव है, संतुष्टता नेचर है। संतुष्टता अगर एक व्यक्ति में है और बहुत ज्यादा है तो वो अपने आप सब में फैलेगी। अगर एक कहता है ऐसी परिस्थितियों में भी मैं तृप्त हूं तो उसका प्रभाव जरूर दूसरों पर पड़ेगा। उसी तरह अतृप्ति भी एक स्वभाव है, सबको सब मिला हुआ है पर कोई कहता है कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो दूसरे जो है उनमें भी संकल्प आएंगे कि हमारे पास भी तो नहीं है। हिंदी में कहते हैं 99 का फेरा, इंग्लिश में कहते हैं 99 क्लब। क्या होता है ये 99 क्लब, किस किस ने ज्वाइन किया है? एक क्लब है जिस क्लब का नाम है 99 क्लब। जिस जो इस क्लब को ज्वाइन करता है वो बेचैन हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, अधीर हो जाता है। एक राजा है, वो देखता है उसके राज्य में एक दरबारी है, गरीब है पर बहुत तृप्त है, बहुत खुश है। रोज दरबार में आता है तो इतना खुशी से आता है, इतना झूमता है हम हर समय। राजा को आश्चर्य लगता है, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, इतनी प्रतिष्ठा है, परंतु फिर भी मैं दुखी हूं और ये व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। उसको पुकार के, उसको बुला के पूछते हैं कि तुम इतने सुखी कैसे? वो कहते हैं मुझे कोई चिंता ही नहीं, जो मुझे मिल जाता है उसमें मैं खुश हूं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, कल की मुझे परवाह नहीं, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जितना मुझे मिलता है मैं उसमें खुश हूं। राजा तृप्त नहीं होता है पर इतना उत्तर सुन के, क्योंकि वो खुद दुखी है, उसको नींद नहीं आती है, इतनी बेचैनी है अंदर। वो अपने वरिष्ठ दरबारियों को बुलाता है और पूछता है ये क्या है, ये व्यक्ति इतना खुश क्यों रहता है? उसमें से जो महामंत्री रहता है वो कहता है मुझे कुछ दिन का समय दे फिर मैं बताता हूं। और वो जो मंत्री होता है वो उस कारोबारी जो व्यक्ति होता है उसके घर में एक पोटली, एक थैली रख देता है जिसमें 99 सिक्के होते हैं, घर के बाहर फेंक के आधी रात को चला आता है। दूसरे दिन वो कर्मचारी जब उठता है तो देखता है थैली उसमें अशर्फिया और गिनता है 99 है। अब बेचैनी चालू हो जाती है क्योंकि 99 है तो अब क्या करना है, एक ही तो चाहिए और एक सोने की अशर्फी साधारण सा कर्मचारी है, काम बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बेचैनी चालू हो गई, कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, अब तक कभी सोचा नहीं था कि ज्यादा पैसे भी चाहिए, पैसों की चिंता ही नहीं थी अब तक, परंतु अब क्या करना है, 100 करने हैं, 99 को क्या करना है, 100 बनाना है। तो अब सोच चालू हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और काम करना है ओवर टाइम, और केवल राज कारोबार काम करके नहीं होगा, कहीं बाहर भी थोड़ा जॉब अगर कर लू छोटा मोटा सा तो डबल। मुंबई, मुंबई जैसे शहर में लोग दो दो जॉब करते हैं, एक जगह मॉर्निंग करते हैं, एक जगह इवनिंग करते हैं, एक जगह दिन करते हैं, एक जगह नाइट भी करते हैं, लंबी लंबी ट्रैवल करते हैं ट्रेन से लोकल से। तो वो फिर बेचैन रहने लगा, दुखी रहने लगा। क्यों दुखी रहने लगा? क्योंकि एक चाहिए। फिर दरबार में जब आने लगा तो उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ रहता है। राजा पूछता है क्या हुआ, वो आप बीती सुनाता है। तब मंत्री कहता है He has joined the 99 club। ये है 99 का फेरा, इसको हिंदी में कहते हैं 99 का फेरा। इतना है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये और ही बेचैनी पैदा करता है। और वो और मिलने के बाद भी बेचैनी चली जाए ऐसा नहीं है, बेचैनी तो रहेगी। तो सबसे पहली माला बाबा ने देखी वो कौन सी है, संतुष्ट मणियों की माला। और ऐसी ही माला भगवान के गले का हार बनेगी, ऐसी ही माला सतयुग में क्या होगी, राज्य अधिकारी की माला बनेगी, और ऐसी ही माला द्वापर में क्या होगी, भक्तों के सिमरन की माला बनेगी। ये तीनों काम होंगे। जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, जो कुछ मिला है वो भाग्य से मिला है, तृप्त रहना है। मधुबन निवासियों के लिए क्या कहा बाबा ने, जो चुल पर वो दिल पर। कितनी मुरलियां सुनने को मिलती है, कितनी सारी क्लासेस सुनने को मिलती है, कितने सारे त्योहार फेस्टिवल यही होते हैं, कितनों की आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद, कितनों के मन की आशीर्वाद मधुबन निवासियों को मिलती है। कितनी महिमा गाई है बाबा ने मधुबन निवासियों की, और मधुबन में जो सेवा करते हैं उनका भी कितना बड़ा भाग्य है। लिस्ट सामने हम नहीं रखते इसलिए अतृप्ति आती है। जो मिला है उसका चिंतन कम है, जो न मिला है उसका चिंतन ज्यादा है। जो 99 मिल गए हैं उसके लिए तो सोच भी नहीं रहे, बस रखे हुए हैं। चिंतन किसका चालू है, जो एक जो नहीं मिला उसका कमरा हमारे कमरे से ज्यादा अच्छा है। उधर हीटर है, यहाँ हीटर नहीं है, उसकी शॉल अच्छी है, उसकी टोपी अच्छी है, उसके कपड़े अच्छे है, उसका जैकेट कहां से लिया, एक्स्ट्रा है क्या, उसकी थाली में वो एक कटोरी कहां से आई, वो एक ज्यादा है। हमारे गुलाब जामुन से उसका गुलाब जामुन बड़ा है। टोली तो सबको मिल रही थी पर हमको छोटा आम मिला, इनको बड़ा मिला। क्या करता है मन, कंपैरिजन, दिन रात कंपेयर करते रहता है। कंपैरिजन बहुत डेंजरस है। हमें जो चाहिए था बहुत है, बहुत मिल गया, इसके लिए निरंतर गुणगान गाते रहना है, बाबा तूने जो दिया बहुत दे दिया, शुक्रिया शुक्रिया, शुक्राने के गीत गाते रहना। परंतु मन बड़ा बावरा है, बावरे मन की बावरी है बातें। चाहता है, उसकी चाहना कभी पूरी ही नहीं होती है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह है, एक जाती है दूसरी आती है। इच्छाओं के स्वभाव को समझना है और तटस्थ होकर देखते रहना है, साक्षी कि आ रही है चली जाएगी, आ रही है चली जा रही है। भोक्ता भाव से इच्छाओं को न देखना। किस भाव से देखना, साक्षी भाव से, विटनेस, थर्ड पार्टी विटनेस। हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं है अभी आई रात को इच्छा जाग रही है, तुरंत वहां पर उसको भोगना नहीं है, उसको आने दो, रुकने दो, चली जाएगी। कल सुबह अमृत वेला वो नहीं रहती है। हाँ, परंतु यदि उसका उपभोग कर लिया तो फिर वो कर्म में आएगी, और कर्म में आने के बाद फिर दूसरे दिन पश्चाताप होगा। इसके लिए पहली माला है संतुष्ट मणियों की माला, जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, जो प्राप्ति स्वरूप है, वो दूसरों को भी संतुष्ट बनाते हैं। दूसरे नंबर की कौन सी माला है, एक पैर इधर एक पैर उधर, कभी संतुष्ट और कभी कभी असंतुष्टता का संकल्प आता है और उस छाया में चले जाते हैं, वहां फंसते और फंसने के बाद तुरंत याद आता है मैं ये क्या कर रहा हूं, और फिर वापस निकल कर आते हैं। इतनी पावर अभी भी है कि उधर फंसने के बाद ये पता चल जाता है कि ये मेरा स्वभाव नहीं, वापस आ जाते हैं। ऐसे भी देखे बाबा, ऐसे बच्चों के गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं, सेवा देखते हैं, और बाबा के मन में संकल्प आता है कि ये दो नंबर वाले एक नंबर में आ जाए, इतने इनमें गुण है, इतनी इनमें विशेषताएं हैं, फिर भी। पर जैसे कहा, हद की इच्छाएं हैं, छोटी छोटी बेहद की प्राप्ति को हद की प्राप्ति बना देते। सेवा कर रहे हैं परंतु सेवा पुरस्कार चाहती है, फंस गए। जैसे स्वर्ग के द्वार पर कभी भीड़ जमा हो गई, इतने सारे उम्मीदवार, द्वारपाल खड़ा है, किसको स्वर्ग भेजा जाए, सब लोग चिल्ला रहे मुझे मुझे मुझे। पंडितों की एक भीड़ है, सभी पंडित कहते हैं हमने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। द्वारपाल कहता है तुमने जो ज्ञान लिया है उधार का ज्ञान है, तुम्हारा अपना क्या है, तुमने क्या अनुभव किया है। जो स्वयं अनुभव करता है वही स्वर्ग के द्वार में आएगा, अंदर प्रवेश करेगा, बाकी नहीं, हट जाओ। तपस्वियों की भीड़ है, एक तपस्वी कहता है मैंने कितने उपवास किए पता नहीं, कितने कष्ट दिए शरीर को और बहुत तपश्चर्या की है, मुझे स्वर्ग मिलना ही चाहिए। द्वारपाल कहता है जो तपश्चर्या फल मांगती है वो तपश्चर्या है ही नहीं, पीछे हट जाता है। समाज सेवकों की भीड़ है, कहते हमने बहुत सेवाएं की है। द्वारपाल कहता है जो समाज सेवा, जो सेवा पुरस्कार के लिए है, जो सेवा पुरस्कार मांगती है वो सेवा है ही नहीं, पीछे हट जाओ। और इस भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा है बहुत पीछे, तो द्वारपाल कहता है उसे आने दो। वो कहता है मुझे मुझे नहीं आना है, मैं यहीं ठीक हूं। वो व्यक्ति सामने आता है, कहता है ना तो मैंने कभी कोई किताब पढ़ी, ना तो मैंने कोई शास्त्र पढ़े, मेरे पास ज्ञान तो कुछ है ही नहीं। रही बात तपस्चर्या की, तो तपस्या शब्द मेरे लिए तो पता ही नहीं मुझे कैसी की जाती है। और सेवा, सेवा मैंने कुछ की ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कुछ, मुझे आप ना जाने दीजिए स्वर्ग में, मैं तो नर्क के लायक हूं और मुझे आखिरी ही पसंद है रहना। द्वारपाल कहता है तुम ही योग्य उम्मीदवार हो, चलो अंदर। Those who are at the last shall be at the first। जीसस कहता है, जीसस क्राइस्ट जो अंत में है, जो अंतिम पंक्ति में खड़े रहने का साहस करते हैं, वो मेरे राज्य में, मेरे पिता के राज्य में प्रथम होंगे। द लास्ट शैल बी द फर्स्ट। जो इतने विनम्र है, जिन्हें कोई नाम नहीं चाहिए, जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, जिन्हें कोई फल नहीं चाहिए, जिन्हें इस संसार के नाम मान से कोई लेना देना नहीं, जो केवल मेरे लिए कर रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति कहता है मेरे पास बस एक ही चीज है, वो जो थोड़ी बहुत है वो है प्रेम, और कुछ भी नहीं। तृप्त है, संतुष्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए संसार का, कुछ भी नहीं। और जो हो रहा है, जो मिल रहा है, उसमें ही खुश है। खुशी, संतुष्टता उस मन की स्थिति का नाम है। तो सबसे पहले वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट, दूसरे जो है वो कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिखाई देता है कि इसको मुझसे कुछ ज्यादा मिल रहा है, ये मेरे से ज्यादा सेवा करता है, बेचैनी चालू हो जाती है। इस प्रकृति को देखो, कैसी प्रकृति है, कौन किसी से किसकी तुलना नहीं करता, इसलिए सब लोग बहुत खुश है इस प्रकृति में। बंदर अगर ये सोचने लगे कि मैं तैरता क्यों नहीं हूं इस मछली के जैसा, कितना बेचैन हो जाएगा। मछली अगर ये सोचे कि मैं भी बंदर की तरह उछल कूद करूं तो दुखी हो जाएगी। हां, एक दूसरी बात है कि दूसरों को देखना, किसी में कोई विशेष गुण है, हम ये सोचे कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी इनसे ये सीखना है, ये अच्छी बात है जब हम सीखने के लिए कर रहे हैं। परंतु वो सीखना यदि कंपैरिजन, तुलना उत्पन्न कर देता है तो फिर दुख चालू हो जाता है। तो ये दूसरे प्रकार के बच्चे। और तीसरे, तीसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? तीसरे थे जो निरंतर असंतुष्ट है। किन किन चीजों से असंतुष्ट है? सबसे पहला अपने ही संकल्पों से, दूसरा स्वयं से ही असंतुष्ट, तीसरा परिस्थितियों से, चौथा छोटी छोटी बातों से, और पांचवा वो वहां नहीं है, वो दूसरी जगह है। और किससे असंतुष्ट है? स्वयं के मन की हलचल से असंतुष्ट। ये पांच कारण बताए। पहला, स्वयं के संकल्प से। बड़े बड़े संकल्प करके रखते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। दूसरों को देख के कल से सुबह 2 बजे अमृत वेला, और जैसे ही 2 बजते हैं कब हाथ निकलता है, अलार्म पर जाता है और अलार्म को बंद कर देते हैं, और इतनी ठंड लगती है। पुरुषार्थ उतना ही करना है, धीरे धीरे बढ़ाना होता है, एकदम नहीं बढ़ाना है, धीरे 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 धीरे, शरीर को देखते हुए, अपने मन की क्षमता को देखते हुए। नहीं तो आधा समय पश्चाताप, अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस कि हम यहां आकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इसके लिए पहले अपने आप को समझना है। मुरलियों में बहुत सारी बातें दी हुई है, पर इस ये बातें मेरे लिए कहां तक लागू हो रही है, मेरा पुरुषार्थ कहां जा रहा है, और कैसे उसको बढ़ाऊं, और बढ़ाना भी कैसे है? स्लोली स्लोली। हमको लग रहा है कि हम जल्दी उठे, अभी 3:30 बजे उठ रहे, जस्ट 5 मिनट पीछे जाओ बस कुछ दिन के लिए, फिर और 5 मिनट पीछे जाओ। 5-5 मिनट पीछे जाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है, इतना आसान नहीं है। केवल 5 मिनट पीछे पीछे सरकने के लिए मन से ही असंतुष्ट है, संकल्पों से असंतुष्ट, दूसरा मन की हलचल से। मन हलचल में आ जाता, कोई अचानक से पुराना संस्कार आ जाता है और फिर हलचल, वो असंतुष्टता का कारण है। और अगर आए भी, तटस्थ भाव से देखना है ये गांठ कब और कहां बांधी गई थी। अचानक किसी के प्रति घृणा शुरुआत कब हुई थी, इसके लिए बहुत गहरी अंतर्मुखता, एकांत में बैठकर उस एक आत्मा को सामने रखकर उस आत्मा से जो यात्रा है संबंध की, वो कहां चालू हुई, कब चालू हुई, उस आत्मा से मेरी जो यात्रा है उसमें कौन कौन से पड़ाव आए, और कब ये गांठें बांधी गई, मोह की या घृणा की या नफरत की या आसक्ति की या काम वासना की, कहां शुरू हुआ। उद्गम जिसने देख लिया वो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाएगा। गांठ किस तरह बांधी गई ये जब तक पता नहीं, तब तक गांठ को खोला नहीं जा सकता। अगर ये पता ही नहीं और हम खींचते रहे तो क्या होगा, वो गांठ कैसी होगी, टाइट हो जाएगी। अनुभव होगा, नाड़ा बांधा हुआ है, उल्टा ही पकड़ लिया कहीं से, और टाइट हो जाता है फिर तो। कहां से खींचा जा रहा है, खींचना नहीं है और टाइट हो जाएगा, ढूंढना है कहां पर ये गांठ बांधी गई, और जिस किस विधि से बांधी गई, जिस विधि से बांधी गई उसी विधि से उसको खोलना है। किस समय मोह उत्पन्न हुआ, मोह का उद्गम स्थान, मोह की गंगोत्री कहां चालू हुई। अचानक तो कोई का किसी में मोह नहीं हो जाता है, अचानक कोई किसी से नफरत नहीं करने लग जाता है, अचानक कोई किसी से घृणा नहीं करने लगता है, अचानक किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता है। वो ईर्ष्या की भी एक यात्रा है, एक जर्नी है। प्रथम कहां हुआ, वहां तक पहुंचना है, पीछे 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 वहां तक हमने हम पहुंच गए और उसको देख लिया तो वो अपने आप खुलना चालू होगी। नहीं तो यहां पर कितने भी संकल्प करो गिर जाते हैं। वो काम विकार कब कहां और कैसे चालू हुआ उसकी भी एक यात्रा है। सूक्ष्म से, मन से, देखने का अभ्यास करना है उसको। तो ये भी असंतुष्टता है, स्वयं के संस्कारों के वश हो जाते, मन की हलचल, फिर छोटी छोटी बातें, इनको मिला हमको नहीं मिला, किसी को सब मिल रहा है किसी को सब कुछ भी नहीं मिल रहा है। सूरज भाई जी एक उदाहरण देते हैं दो सेवाधारियों का। दो सेवाधारी है, लेट हो गया सेवाओं में, भंडारे में पहुंचे, देखा सब कुछ खत्म हो गया है, क्या पड़ा है, सूखी रोटियां, वो भी तोड़ी हुई। एक इतना क्रोधित होता है, दिन भर तो सेवा करो और ये मिल रहा है, कुछ भी नहीं है यहां पर, मैं नहीं खाता हूं, वो जाके सो जाता है, पर नींद थोड़ी आती है, करवटे बदलते रहता है। दूसरा देखता है, आहा बाबा को कितनी परवाह है, रोटियां भी तोड़ के रखी है, हमें तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, उस परिस्थिति में भी खुश है, संतुष्ट है, और वो रोटी, सूखी रोटी खाकर भी तृप्त होकर आराम से सोता है। मन, माइंडसेट, एटीट्यूड है संतुष्टता। एक जो भी मिला, जैसा भी मिला, हम खुश है, आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी खुश है। तो तीसरे नंबर की जो आत्माएं हैं वह तृप्त है, असंतुष्ट है, किससे, छोटी छोटी बातों से। हमें अपने आप को देखना है, मैं कहां अतृप्त हूं, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं। हां, पर जो व्यक्ति अतृप्त होता है, हमारे लिए वो छोटी बात है, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। मूल्य वस्तुओं का है ही नहीं वास्तव में, मूल्य किसी और चीज का है। वस्तु खो गई उसका मूल्य नहीं। जैसे पहले भी कभी बताया था, एक व्यक्ति है जिसका मकान आग लग गई, रो रहा है वो, जोर जोर से रो रहा है, इतना बड़ा मकान और उसको आग लग रही है, इतना दुखी हो रहा है, कोई बचाओ कोई बचाओ, लोग बचाने की कोशिश कर रहे पर बचने की संभावना नहीं है, पूरा जल रहा है। उसका छोटा बेटा भाग के आता है, पिताजी आप रो क्यों रहे हैं, वो कहता है देखते नहीं अपना घर जल रहा है। वो कहता है घबराने की बात नहीं, ये घर तो मैंने कल ही बेच दिया था, बेच दिया था, आंसू खत्म, घर अभी भी जल रहा है, पर घर तो बेच दिया है, अभी आंसू नहीं आ रहे, अभी आंसू पोंछती है। दूसरा बेटा भाग के आता है, पिताजी आप देखो हमारा घर जल रहा है। वो कहता है अरे वो तेरे छोटे भाई ने भेज दिया था। वो कहता है भेज तो दिया था पर पैसे अभी मिले नहीं है, खाली डील हुई थी, क्या फिर से रोना चालू, घर अभी भी जल रहा है, पहले भी जल रहा था, बीच में भी जल रहा है, अभी भी जल रहा है, अब फिर से रोना चालू कर दिया। फिर उससे बड़ा बेटा आता है, पिताजी आप रो क्यों रहे। वो कहते देखते नहीं घर जल रहा है, बेच तो दिया था छोटे भाई ने परंतु केवल डील हुई थी, पैसे अभी तक मिले नहीं। वो कहता है जिसको भेजा था वो अपने वादे का बहुत पक्का है, चाहे घर जल भी जाए वो जरूर लेगा। कहते अच्छा, आंसू फिर से पोंछ लिए, घर अब भी जल रहा है। घर का कोई संबंध नहीं है यहां पर, संबंध किसका है, मेरा घर है। समझना है खेल को मन के, उसने विस्तार कर रखा है मैं और मेरा का, और इस मैं और मेरे में आत्मा फंसती है। छोटी छोटी बातों से अतृप्त, मन की हलचल से अतृप्त, परिस्थितियों से। जब तक कोई परिस्थिति नहीं तब तक ठीक है, परिस्थिति आ गई कि हलचल चालू, शरीर की ऐसी बीमारी, हलचल चालू, अब तक सब ठीक था, डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर लग रहा है, अभी तक कोई सिम्टम्स थे नहीं, जब से सुना तब से चालू हो गया, अब तक कुछ नहीं था, जब से बोला तब से चालू हो गया, मन काम करने लग गया उसके ऊपर और उसको जोड़ दिया और फिर सब होने लगा। इस मन को समझना है। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है वो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी अगर हो जाए तो भी ऐसा ही होगा। हमें याद है बहुत पहले हमको एक बार पीठ में दर्द हुआ, पीठ में, तो माइल्ड सा था, एमआरआई कराया, एमआरआई में तो कुछ और ही दिखाया, ज्यादा दिखाया, तब से जैसे वो देखा वो ज्यादा बढ़ गया, तब तक कुछ नहीं था, अब तक सीधा चलते थे, जब एमआरआई देखा फिर ऐसे लंगड़ लंगड़ के चलने लगे क्योंकि वो दिख रहा है। इधर माइंड ने स्वीकार कर लिया। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 80%, कोई कहते हैं 90% बीमारियां जो है वो साइकोसोमैटिक है, मन में उत्पन्न होती है, और जो अध्यात्म को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं उनका कहना है इससे भी आगे कि ये सारी बीमारियां जो है कहीं ना कहीं हमारे अतीत से जुड़ी हुई है, बचपन से, बचपन में क्या हुआ था उसके साथ इनका कहीं ना कहीं संबंध है, बहुत सूक्ष्म में, उनका जन्म बहुत पहले हुआ है। यहां तक कि विदेश में ऐसे भी प्रयोग किए गए, किरलियन फोटोग्राफी जिसको कहते हैं, जिसमें पहले ही दिखाया जाता है, देख सकते हैं हाथों में क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस, जैसे किसी व्यक्ति का वो किरलियन फोटोग्राफी ली गई, उसमें देखा गया ये हाथ में कुछ अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे, 6 महीने के बाद उसी व्यक्ति का वो हाथ टूट गया, चेंजेस बहुत पहले ही आए। तो बहुत सारी बातें मन से उत्पन्न होती है। तो तीसरे नंबर की आत्माएं कौन सी है, असंतुष्ट, अतृप्त, सब कुछ मिल जाए फिर भी अतृप्त। जैसे विदेश में अमेरिका में एक जगह है, मॉस्क कहीं, नाम हमें याद नहीं, वहां पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर 2 झरने हैं, एक तरफ गर्म पानी एक तरफ ठंडा पानी, तो गांव के लोगों को कितना अच्छा हो गया कपड़े धोने के लिए, पहले गर्म पानी में धोते हैं फिर ठंडे पानी में धोते हैं। एक इंटरव्यू लेने के लिए लोग, एक व्यक्ति वहां गया उनका अनुभव पूछने के लिए, आप बताओ आपको कैसा लगता है यहां, उसे तो ऐसा लगा कि ये लोग इतने खुश रहते होंगे कि यहां बना बनाया इनको सब मिलता है। तो वहां की महिलाओं ने कहा वो सब तो ठीक है पर साबुन कहां है, वो तो हमें अपना लाना पड़ता है, गर्म पानी भी मिल गया ठंडा पानी भी मिल गया, परंतु दुखी क्यों है, साबुन नहीं है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर, एकदम अलर्ट, और एक संकल्प के साथ, मैं संतुष्ट मणि हूं, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मुझे चाहिए था तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, पाना था सो पा लिया। गहन अनुभूति, आंखें बंद कुछ समय के लिए और इस अनुभव में साथ बैठना है, बीच में आंखें खोलनी है और बाबा को फिर धन्यवाद देना है। क्या है, प्रसन्न चित्त, और प्रसन्न चित्त जो आत्मा है वो प्रश्न चित्त नहीं है, और प्रसन्न चित्त जो आत्मा है उसे कितनी बातों से शिकायत नहीं है, अपनी देह से कोई शिकायत नहीं, देह में जो भी बीमारी आ रही है खुशी खुशी से, अपनी सहनशीलता, मेरी सहनशीलता बढ़ाने के लिए ये दर्द आया है, मेरी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, मुझे एक नया पाठ पढ़ाने के लिए कि मैंने जरूर कोई गलती की है इसलिए तो ये बीमारी आई है। कहीं ना कहीं आहार में, विहार में, व्यवहार में गलती हुई है इसलिए बीमारी आई है। सीखना है बीमारियों से, जब भी कोई बीमारी आए, छोटी सी छोटी बीमारी, सर्दी खांसी भी आई है, कुछ तो गलती की है, वो गलती कौन सी है, और अभी जो कुछ सहन करना पड़ रहा है ये सोचना कि इससे मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। बीमारी, परिस्थितियां सिखाने के लिए आ रही है, पेपर्स, विघ्न सिखाने के लिए आ रहे, ड्रामा कल्याणकारी है, मेरा अहित हो ही नहीं सकता इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई व्यक्ति मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, कार्य कारण का नियम है, मेरा ही किया हुआ वापस आ रहा है। कोई छूट नहीं सकता इस विधान से। जिसने जिसको दुख दिया होगा उसको क्या कहते हैं बाबा, दुखी होके मरना होगा। अगर तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम्हारी दो गुना निंदा होगी। न भाग्य विधाता से, भगवान से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, नहीं तो आधा योग कंप्लेंट वाला योग होता है। तो फरियाद वाला हो या याद वाला हो, बाबा को कौन से बच्चे पसंद है, वो जो रोज आके कंप्लेंट करते हैं, बाबा ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा कर दो, कमरा बदल दो, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, ये डिपार्टमेंट चेंज कर दो, सब चेंज हो जाएगा। परंतु हम तो वही रहेंगे ना, ना स्थान बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, ना व्यक्ति बदलेंगे। तुम्हें ही बदलना होगा, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे और ना ही परिस्थिति, हमें ही बदलना होगा। कितना अच्छा संकल्प है, पावरफुल थॉट है। किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, न व्यक्ति के प्रति, न प्रकृति के प्रति, बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, बारिश बहुत है, बाबा बारिश रोक दो, हम वहां पहुंच जाएंगे फिर बारिश चालू कर देना। कितना स्वार्थ भरा संकल्प है। बहुत बारिश आ रही है, बारिश नहीं आ रही है, योग करो ताकि बारिश आ जाए। अब बारिश इतनी ज्यादा आ गई, लोग मर रहे, किस किस ने योग किया था बारिश के लिए बारिश आने के लिए योग नहीं है, प्रकृति को पवित्रता की किरणें दो बस, फिर उसको वो डिसाइड करे कि प्रकृति बारिश लानी है कि नहीं लानी है। बाबा बहुत ज्यादा ठंडी है, गर्मी आ जाए और मेरे कमरे में आ जाए तो ठीक, बाकी होगा, बाकी देख ले। प्रकृति के प्रति कभी भी कौन सा भाव होना चाहिए, धन्यवाद का भाव, तो प्रकृति सहयोगी बनेगी। हमेशा प्रकृति के प्रति मन में घृणा, नफरत या कंप्लेंट है, आज ठंडी ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, बारिश इतनी, कितने महीने हो गए कंटिन्यूस बारिश चालू है, मन में संकल्प है, रहने तो बारिश, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम उसे किरने दे, प्यूरिटी की किरने दे, शांति की किरने दे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, नहीं तो वो स्वार्थ हो जाएगा। वो मनसा सेवा, मनसा सेवा, वो मनसा सेवा जो पुरस्कार मांगती है वो सेवा है ही नहीं। मनसा सेवा तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक बात सिखाई थी जो महावीर ने शायद अपने शिष्यों को नहीं बताई, इसलिए जैन धर्म थोड़ा सीमित रह गया, बौद्ध धर्म का विस्तार बहुत हुआ। बौद्ध धर्म में एक बात है कि जो तपस्या तुम करते हो, जो साधना तुम करते हो, साधना पूरी होने के बाद उस साधना को बांट दो, उसके फल को, मैत्री भाव सबको बांट दो कि ये जो तपस्या मैंने की, ये तपस्या से सबका मंगल हो जाए, सबको मिल जाए इस तपस्या का फल, केवल मुझे ही नहीं, पर्सनल मुक्ति नहीं, सबकी मुक्ति हो, सबका कल्याण हो। हम भी जो योग करें, केवल व्यक्तिगत योग ना हो कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये योग का फल सारी ब्राह्मण आत्माओं को मिल जाए, कितना अच्छा संकल्प है। अमृत वेला योग पूरा हुआ और जो योग बल तो जमा हुआ है, अब ये बल किसको मिल जाए, केवल मुझे नहीं, नहीं तो मैं बलवान हो जाऊं और बाकी सब मेरे से कम बलवान, मैं पवित्र हो जाऊं बाकी सब कम पवित्र, ये भी अहंकार लाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं होलियर देन थाउ एटीट्यूड, मैं तुमसे ज्यादा पवित्र हूं, हटो यहां से, अहंकार, ये भी भावना। इसलिए हम जो भी तपस्या करें, तपस्या होने के बाद जब भी योग पूरा होता है क्या करना है, इस योग का फल विश्व की सर्व आत्माओं को मिल जाए, सबका योग बल बढ़ जाए। बहुत अच्छा संकल्प है ये। तो इन किसी भी बातों की कोई शिकायत नहीं होती है प्रसन्न चित्त आत्मा को। तो ये आज की मुरली थी। असंतुष्टता क्या है, असंतुष्टता के कारण क्या है, संतुष्टता की तीन मालाएं, प्रसन्न चित्त कैसे रहा जाए, और प्रसन्न चित्त तो एक परिणाम है संतुष्टता का। जो संतुष्ट है अंदर से वो अपने आप प्रसन्न है बाहर से। और संतुष्टता भी एक दो प्रकार की है, एक है सच्ची संतुष्टता, एक है दिखावे वाली नहीं, लोमड़ी वाली। क्या प्रसन्नता है, क्या संतुष्टता है, वो लोमड़ी गई, देखा अंगूर है लटके हुए, बहुत कोशिश की पर हाथ तो पहुंचे ही नहीं, और फिर जब नहीं पहुंचे तो देख लिया आसपास किसी ने देखा तो नहीं। क्योंकि हमारी एक होती है प्राइवेट में हार हो जाना, एक होता है पब्लिक में हार हो जाना। पब्लिक वाला थोड़ा ज्यादा इंसल्टिंग होता है, तो देखती है किसी ने नहीं देखा, परंतु एक खरगोश निकल के आता है, कहता है चाची क्या हुआ, अंगूर नहीं खाए? बोलते खाए बहुत ही खट्टे थे, क्या खाना है, मुझे तो चाहिए ही नहीं, ऐसे खट्टे अंगूर मुझे पसंद ही नहीं है। ये भी संतुष्टता है ये पर कैसी प्रसन्नता है, ये कैसी संतुष्टता है, झूठी मिथ्या असमर्थ है, इसलिए संतुष्ट दिखा रही है पर है नहीं वास्तव में, अंदर से तो चाहिए पर मिल नहीं रहा, इसलिए संतुष्टता दिखा रही है। कहानी यहां पूरी नहीं होती है, कहानी और आगे है। अब वो लोमड़ी क्या सोचती है कि मुझे अब शक्तिशाली बनना है, थोड़ा सा कसरत विसरत करके बहुत तगड़ी हो जाती है, और फिर आती है और फिर पकड़ लेती है अंगूरों को, और अब अंगूर खाती है तो अंगूर वास्तव में खट्टे, परंतु जब खरगोश पूछता है, क्या पूछता है कि चाची अब कैसे है, बहुत मीठे है क्या हो गया अपने अहंकार की सुरक्षा करती है हमारी संतुष्टता ऐसी थोपी हुई। अगर बाबा पूछे सब संतुष्ट है, ऐसे ऐसी उंगली करके बताए, हाँ वो कहता है हाँ मैं हूं बाबा मैं हूं, सबने बताया मैं कैसे ना बोलू, हाँ मैं भी हूं। जैसे बाबा हाथ उठवाते हैं ना, कौन कौन है, सब हाथ, किसी को पता भी नहीं क्या प्रश्न है दो दो हाथ उठा देते, कौन कौन बाप समान बने, सब हाथ खड़े किस किस ने प्लानिंग की है न्यू ईयर की, किसको पता भी नहीं प्लानिंग क्या की कर कैसे की जाती है, हाथ ऊपर। वो तो चलो अज्ञान में, पर यहां अहंकार से वैसी वाली संतुष्टता नहीं चाहिए, सच्ची संतुष्टता, गहरी संतुष्टता। भिखारी कहता है मुझे नहीं चाहिए फाइव स्टार होटल का भोजन, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं तो संतुष्ट हूं, पर वही वही बखान करते रहता है, ये संतुष्टता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही ऊपर है, अंदर क्या है, अभिप्सा कामना है, वासना है। इसलिए बाबा ने कहा हद की इच्छा नहीं, हदे पड़ जाती है दिलों में, अच्छा शब्द प्रयोग किया है। राजस्थान से क्या कहा बाबा ने, राजाई संस्कार, ऊंचे रहने वाले, ऊंचे धाम, ऊंचा काम। यूपी से क्या कहा, पतित पावनी गंगा है, दूसरों को पावन करने वाले। विदेशियों से क्या कहा, बाप जैसा विदेशी है, तुम देह से विदेशी, अव्यक्त अशरीरी, इस देह से इतने अनासक्त, इतने आकर्षण मुक्त, जैसे बाबा कितना देह से न्यारा है, अनासक्त है, उसको देह का जरा भी आकर्षण नहीं है। जब अव्यक्त बाप दादा आते भी है, सभी ने देखा है अव्यक्त बाप दादा को स्टेज पर बैठते हुए, कितनी कम मूवमेंट्स है बाबा की। जब गुलजार दादी के तन में आते हैं, शरीर की हलचल भी कितनी कम है, या हिलाते रहते हैं ना, क्योंकि देह से इतना न्यारापन है, वो जो आत्मा उस तन में प्रवेश कर रही है, वो आत्मा में वो न्यारापन है, इसलिए मूवमेंट्स बहुत कम है, और कितना स्थिर है। तो भगवान अनासक्त है वैसे। और कौन सा ग्रुप था, मधुबन जो हमने देखा, और क्या था मुरली में, विदेश दादी छुट्टी पर जा रही है, क्या कहा बाबा ने, क्या करो जाके, वरदानों की वर्षा करो। कितनी अच्छी बात है। जब भी हम सेवा में जाए क्या सोचकर जाए, मैं किस लिए जा रहा हूं, आत्माओं पर वरदानों की वर्षा करने के लिए। और जा नहीं रहे, बाबा में समाये हुए हैं। तो इस मुरली से कुछ कुछ बातें सीखनी है और उसको संस्कार बनाना है। रात को सोते समय भी रिपीट करते हुए सोना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। तो अपने आप मिलते रहेगा। ये प्रकृति, ये जो कायनात है, इसमें हमारे संकल्प जाते हैं। जिस तरह के संकल्प हम इसमें छोड़ेंगे वैसे ही संकल्प वापस आएंगे। जो नहीं मिला है वो भी मिलने लगेगा अपने आप। और जो कंप्लेन करते रहता है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वही संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और अप्राप्ति, नई सिचुएशन, दुख निर्माण होंगे। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, नए दुख आएंगे। ऐसे कैसे संतुष्ट मणि आत्माओं को, ऐसे प्रसन्न चित्त आत्माओं को, प्रश्न चित्त नहीं ऐसी आत्माओं को, ऐसे वरदानी मूर्त आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को, ऐसे पतित पावनी गंगाओं को, ऐसे राजाई संस्कार वाले राजस्थान निवासी आत्माओं को, ऐसे डबल विदेशी आत्माओं को, बाप भी विदेशी मैं भी विदेशी, फ्रेंड्स के साथ घूमना ज्यादा अच्छा लगता है, पेरेंट्स से इतना आकर्षण नहीं होता है बाबा ने कहा, ऐसे सिकिलदी आत्माओं को, ऐसे लाडले बच्चों को, ऐसे अशरीरी अव्यक्त आकर्षण, देह के आकर्षण से मुक्त आत्माओं को, ऐसे मायावी टच जिनको नहीं होता ऐसी आत्माओं को, ऐसे जो देह के अधिकारी है और माया के अधिकारी है ऐसी आत्माओं को, ऐसे हर्षित मुख आत्माओं को, ऐसे आकर्षण मूर्त आत्माओं को, ऐसे वरदानों की वर्षा करने वाले आत्माओं को, ऐसे गोल्डन पुष्प संतुष्टता के दूसरों पर बरसाने वाली आत्माओं को, ऐसे तीसरे को पहले, तीसरे को दूसरे और दूसरे को पहले में ढकलने वाली आत्माओं को, ऐसे मालामाल आत्माओं को, तृप्त आत्माओं को, ऐसे पाना था सो पा लिया ये गायन करने वाली आत्माओं को, ऐसे मधुबन निवासियों को, ऐसे सर्व खजानों से भरपूर आत्माओं को, खजानों को सही समय पर कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे हदों से मुक्त आत्माओं को, हद की प्राप्ति को बेहद की प्राप्ति बनाने वाली आत्माओं को, स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।